तब तक उसकी समझ में आ गया कि इसकी गोद में जो पिटारी रखी है यही सारी समस्या की जड़ है। इसी से कुछ कुछ बोलती रहती है, कुछ कुछ करती रहती है। ये पिटारी यदि उठा करके फेंक दी जाए तो हो सकता है ये हमसे फिर बातचीत करे। वह क्रोध में भर गया और उसने ठाकुर जी शिल पिल्ले भगवान उठाए और सरोवर में डाल दिया। अगाध जल से भरा हुआ सरोवर। अब तो महाराज यह व्याकुल हो गई, बहुत रोई, बहुत प्रयत्न किया गया पर ठाकुर जी मिले नहीं, जल बहुत अगाध था। अंत में उसी स्थिति में बहू को रोते हुए ले गया ससुराल ले जाया गया। वहां उसने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया, वह एकदम मरणासन्न हो गई। तब उसके सास ससुर सब लोग उसको लेके फिर सरोवर के तट पर आए। सब राजकुमार से बिगड़ने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। अंत में जब वहां आए और बहुत प्रयत्न किया पर ठाकुर जी नहीं मिले, बड़े बड़े गोताखोर बुलाए गए, ठाकुर जी नहीं मिले। अंत में कहा गया कि तेरे हृदय में अधिक प्रेम है तो अब तू बुला ले, ठाकुर जी तो तेरे सामने इसी में गए, हम लोग तो प्रयत्न करते करते थक गए हैं। तो जैसे ही उसने कहा हे शिल्पिल्ले भगवान या तो हमारे पास आ जाइए या अपने चरणों में मुझे बुला लीजिए, बस हे शिल्पिल्ले भगवान कहा तो ठाकुर जी जल से बाहर आए और आकर के राजकुमारी के वक्षस्थल से लग गए। वो पूरा परिवार विमुख था, सब भक्त हो गए। नाभाजी ने चरित्र लिखा है शिल्प लेके कहत कुमारी पे हरी चलिया। भक्त के प्रेम का आदर करते हैं ठाकुर। श्री राम सखे जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए हैं, आपके सिद्ध ठाकुर जी शालिग्राम जी संपुट बटुआ में रखते थे। और चित्रकूट की घटना है, चित्रकूट में प्रमोद वन में जो कुआं है उस कुआं में जल खींच रहे थे ठाकुर सेवा के लिए। और तब तक ठाकुर जी बटुआ से निकल के कुआ में ठाकुर जी गोता लगा गए। कुआ में से जल खींच रहे थे, ठाकुर जी कुआ में गिर गए। बहुत खोजा लेकिन ठाकुर जी मिले। आज भी वो कुआ है चित्रकूट में, आज भी वो कुआ है। अंत में बहुत विरह व्यथित हो गए राम सखे जी और उन्होंने कहा अरे शिकारी, सखेरस है ना इसलिए ठाकुर जी को सब कह सकते, अरे शिकारी निर्दयी, अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर क्यों तरसावत है जिया, राम सखे चित चोर। कितने बढ़िया विशेषण है, अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर, श्याम सुंदर नहीं करिया, कहते ना एकदम करिया है, करिया अवध किशोर क्यों तरसावत है जिया, राम सखे चित चोर। जैसे ही व्याकुल होकर पुकारा शालिग्राम जी महाराज सुंदर खिला हुआ गुलाब का पुष्प, उस पर तुलसी दल का आसन और उस पर विराजमान शालिग्राम जी जल से ऊपर तक आ गए और कुआं का जल बढ़कर ऊपर तक आ गया। आपने अपने ठाकुर जी को फिर संपुट में पधरा लिया। वो ठाकुर जी का हम दर्शन करके आए हैं, वे ठाकुर जी आज भी विराजमान है मैहर में। राम सखे जी का श्री राम जानकी जी का बड़ा अखाड़ा कहते हैं उसको, बड़ा अखाड़ा स्थान है, आज भी वहां वे शालिग्राम जी विराजमान है। प्रेमी भक्तों के विलक्षण विलक्षण चरित्र भक्तमाल ग्रंथ में हैं। तो हम विशेष बात ये कह रहे थे कि नाभा गोस्वामी जी की कृति इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं भी कोई दुराग्रह अथवा कोई भेद नहीं। प्रियादास जी टीका लिख रहे हैं, भक्तमाल ग्रंथकार श्री नाभाजी के अभिमत को प्रकाशित कर रहे हैं, बोले भक्तमाल ग्रंथ में किसके चरित्र हैं, भक्तों के चरित्र। और एक बात बता दें, भक्तों की कोई जाति नहीं होती और भक्तों का कोई संप्रदाय भी नहीं होता, क्योंकि वे किसी भी संप्रदाय में प्रकट हो सकते हैं, वे किसी भी वर्ण में प्रकट हो सकते हैं, वे किसी भी आश्रम को कृतार्थ कर सकते हैं, निश्चित है। अरे राम जी, भक्त तो पशु पक्षी शरीर में भी हो सकते हैं। कागुसुंडी पक्षी शरीर में है कि नहीं? उच्च कोटि के भक्त हैं कि नहीं? हमारे यहां तो गज गोपाल दास जी का चरित्र है, हाथी भगत की कथा भक्तमाल में, और सामान्य भक्त नहीं, हाथी भी इतना उच्च कोटि का भक्त हुआ कि उनका नाम रखा गया महात्मा गज गोपाल दास, अंत में जमात के महंत बना दिए गए, तो श्री महंत गज गोपाल दास जी महाराज, देव मुरारी जी महाराज, श्री रसिक मुरारी जी महाराज, जिनके संबंध में नाभाजी ने लिखा है, रसिक मुरारी उदार अति मत गजहीं उपदेश दियो। बंगाल के सूबेदार ने संत सेवा गो सेवा के लिए मिली हुई संपत्ति को जब्त कर लिया था और गुरुदेव ने आदेश भेजा तो श्री रसिक मुरारी जी वहां पहुंचे और उस दुष्ट म्लेच्छ ने ऐसा षड्यंत्र किया था कि हाथी मतवाले पागल हाथी से कुचलवा करके इन्हें मरवा दिया जाएगा और कलंक भी नहीं लगेगा, कहेंगे महाराज बुलवाया महल में मिलने के लिए, और मतवाले हाथी को, वैसे ही पागल हाथी, उसे नशा और पिला दिया गया, पागल हो गया हाथी, और हाथी उपद्रव मचाता हुआ हाथी आया और कहारों ने पालकी उसी के सामने उतार दी, पहले से निश्चित ही था, और वे सब कहार भाग गए। नवाब देख रहा था महल के छत के ऊपर से क्या तमाशा हो रहा है, और श्री रसिक मुरारी जी निर्भय होकर खड़े हैं और उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण कहो छाड़ो गज तम तन, हे गजराज कृष्ण कृष्ण कहो इस तमोगुण का त्याग करो। जैसे ही कृष्ण कृष्ण कहो कहा, महाराज उस गजराज के सारे पाप नष्ट हो गए, उसे अपने अनेकों जन्मों की स्मृति हो गई, वह रुदन करने लगा, अमुक पाप के कारण मैं इस योनि में गया, 84 के चक्र में पड़ा हूँ, हाय हाय मेरी क्या गति होगी, उसे पश्चाताप होने लग गया। रसिक मुरारी जी ने कहा, गजराज इतने दुखी क्यों हो रहे हो, भगवान ने तो गजेंद्र का भी उद्धार किया था, भगवान पतित पावन है, तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण का नाम पतित पावन है, कान में अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का उपदेश किया, तुलसी कंठ में बांधी और महाराज जी ऊर्ध पुंड पधरा कर विधिवत शिष्य बनाया हाथी को और नाम रख दिया गोपाल दास, गज गोपाल दास, सेवा में रहने लग गए। पागल हाथी को शिष्य बना लिया, वो शिष्य हो गया, नवाब चरणों में आकर नतमस्तक हो गया, फिर पूरे क्षेत्र में भक्ति का प्रचार रसिक मुरारी जी के द्वारा हुआ, अपनी जमात का महंत विधिवत चतुष संप्रदाय के संत महंतों को बुला करके उन्हीं को चादर उड़ा दी गई, उन्हीं को महंत बनाया गया। महंत ऐसा होना चाहिए, भारी भरकम हो, थोड़ा ताकतवर हो, सबकी सेवा करने में कुशल हो, तो इससे बढ़िया महंत कहां मिलेंगे। गज गोपाल दास जी को महंत बना दिया, इनका भी चरित्र अद्भुत चरित्र है, गज गोपाल दास जी भक्तमाल ग्रंथ में पढ़ने योग्य चरित्र है। गज गोपाल दास जी भक्त किसी भी स्वरूप में हो सकते,
सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा।
भगवान के भक्त सबको सुलभ है, सब ही सुलभ, सब दिन सभी दिनों में सुलभ है, इस गौर कलिकाल में भी बहुत भक्त सुलभ हैं, सब देशों में सुलभ हैं, बस उनको पहचानने की आवश्यकता है और आदर पूर्वक उनके सेवन करने की आवश्यकता है। बोले आदर पूर्वक उनको पहचान उनका सेवन करेंगे तो क्या होगा? बोले समन क्लेशा, क्लेशों का समन हो जाएगा। क्लेश क्या है? भगवान से विमुख होकर अनेक योनियों में भटक रहे हैं, भगवान के चरणों से दूर हैं, उनकी सेवा से दूर हैं, इससे बड़ा क्लेश और कोई दूसरा नहीं है। इस क्लेश का समन संतों की कृपा से हो जाता है, शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति हो जाती है। पहचानने की आवश्यकता है। भगवान का भक्त जहां दिखाई पड़ जाए उसका आदर करो, फिर लोक संबंध को भूल जाओ, उसकी अलौकिक महिमा का स्मरण कर लो। कहां तक हैं? आपका पुत्र यदि साधु लक्षण वाला है, भगवान का प्रेमी अनुरागी भक्त है, तो आप पुत्र को भी केवल पुत्र न माने, उसे भक्त मानकर उसका आदर करें, आपको वहीं से लाभ मिलेगा। आप लोग कहेंगे ऐसा हुआ है? बोले हाँ, आत्मदेव जी ने अपने पुत्र के रूप में संत का दर्शन किया गोकर्ण जी के रूप में, और बिना किसी संकोच के इतने बड़े विद्वान ने कहा, माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधान संत भगवान मेरा उद्धार करो। और फिर प्रसन्न हो गए गोकर्ण जी, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिवत्वम। इतने में ही काम बन गया गोकुल आत्मदेव जी का। पुत्र के रूप में संत की प्राप्ति हो जाए तो आदर करो। कहां तक हैं? पुत्री के रूप में संत की प्राप्ति हो जाए तो आदर करो। खंडेला के राजपुरोहित पंडित श्री परशुराम जी पारिक, पारिक ब्राह्मण भी होता है ना और वैश्य भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं ना उधर गुजरात में, पारिक वैश्य भी होते हैं, राजस्थान में पारिक ब्राह्मण भी होते हैं। पंडित जी करमेती का दर्शन करने वृंदावन आए परशुराम पंडित जी, और जब प्रेम विरहिणी अपनी बेटी करमेती को देखा तो व्याकुल हो गए। बोले बेटी मेरा कुल धन्य हो गया, हमारी सहस्रों पीढ़ियों का उद्धार हो गया तेरी जैसी भक्ता को प्रकट करके, बहुत संतोष है तेरी वैराग्यपूर्ण रहनी को देख करके और उत्कट श्री कृष्ण प्रेम को देखकर चित्त में बहुत आह्लाद। पर बेटी तैने मेरी नाक कटवा दी, राजगुरु राजपुरोहित की बेटी और वो भी गोने के समय युवावस्था में, ससुराल पक्ष के लोग आकर यहां पड़े हैं और वो रात्रि में भाग गई, 50 मुंह 50 तरह की बातें हो रही। अरे भजन करना था तो क्या खंडेला में कोई मनाही थी भजन की? नहीं जाती ससुराल, जीवन भर भजन करती, पर तूने तो मेरी नाक ही कटवा डाली। करमेती जी ने कहा, करमेती जी ने कहा,
कही तुम कटी नाक कटे यदि होय जो पे
कही तुम कटी नाक कटे यदि होय जो पे
कही तुम कटी नाक कटे यदि होय जो पे
कही तुम कटी नाक कटे यदि होय जो पे
ना नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाई।
हाँ नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाई।
आपने कहा नाक कट गई, अरे नाक कटे तो तब जब होए, आपके नाक थी कब जो कट गई? करमेती जी ने अपने पिताजी से क्या कहा, अरे जिसकी नाक होए उसकी तो कटे, आपके नाक थी कब जो कट गई? अरे नकटे की क्या नाक कटेगी, उसको नकता पहले से ही। पंडित जी ने कहा बेटी क्या बोल रही हो इतना कठोर, अरे मैं तो बहुत बड़ी नाक वाला हूं। नाक शब्द का संसार में इज्जत माना जाता, प्रतिष्ठा। करमेती जी ने कहा सबसे लंबी नाक तो गणेश जी महाराज की है, इसलिए तो वो प्रथम पूज्य हैं। सबसे बड़ी नाक वाले गणेश जी, बताओ इतनी बड़ी नाक हो किसी की? पर ये गणेश जी की लंबी नाक कैसे हुई? महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, राम राम करने से इतनी लंबी नाक हो गई, प्रथम पूज्य हो गई। आपके नाक थी कब जो आपकी कटी? पिताजी जिसे जिस संसार की मान बड़ाई प्रतिष्ठा को आपने नाक मान रखा है, वो नाक नहीं है, वो तो नरक ले जाने वाली नाक है। सच्ची नाक तो भगवान की भक्ति है, सच्ची प्रतिष्ठा तो भगवान की भक्ति है, और ये जो नाक है भगवान की भक्ति रूपी जो नाक है, ये तो स्वर्ग लोक के देवताओं को भी दुर्लभ है। ये नाक तो देवताओं को प्राप्त नहीं तो मनुष्य को कहां से प्राप्त हो? नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। अब पंडित जी की आंख खुल गई। पंडित जी बोले हां ये बात तो बिल्कुल है, मैं तो बिना भक्ति का हूं, नकटा हूं। अब मेरी नाक कैसे आवे जिस नाक से जीव का कल्याण होता है? आहा, करमेती जी ने कहा
बरस पचास लगी विषही में बास कियो।
बरस पचास लगी विषही में बास कियो।
भेना उदास तऊं चवे को चवाइए।
भेना उदास तऊं चवे को चवाइए।
पिताजी 50 वर्ष हो गया आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, राजगुरु हो, जो वैभव राजाओं को सुलभ है वही सुख सुविधा आपको भी सुलभ है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको आपने न भोगा हो? लेकिन इतने बड़े भागवत के वक्ता, आपके संग से, आपके सदुपदेश से मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, और आप स्वयं भय न उदास, भोगों से विषयों से उदास नहीं हुए, तो हूं चवे को चबाइए। आंख खुल गई पंडित जी की, और महाराज जी अपनी पुत्री के रूप में उन्होंने संत का आदर किया, और पंडित जी महान भक्त हो गए। करमेती जी ने स्वयं प्रकट बिहारी जी का विग्रह उन्हें प्रदान किया, आज भी वह स्वरूप खंडेला में विराजमान है, हम भगवत कृपा से कई बार दर्शन करके आए। बिहारी जी का सुन हरिशरणम। तो पुत्री के रूप में, भाई के रूप में, राजा के रूप में, कहां तक कहें, पत्नी के रूप में यदि आपकी पहचान में आ जाए कि ये हमारी धर्म पत्नी अवश्य है, पर ये भगवान की महान भक्ता है, तो आप संकोच त्याग करके पत्नी में संत का दर्शन करके और उसका आदर, उसके प्रति आदर बुद्धि रखिए, संत मानकर आदर पूर्वक सेवन कीजिए, आपको वहीं से भक्ति मिल जाएगी। ऐसे अनेक उदाहरण। कुवलयाश्व महाराज ने पौराणिक चरित्रों में कुवलयासु महाराज ने अपनी पत्नी मदालसा में संत का दर्शन किया और अपनी पत्नी के उपदेश से ही गृह त्याग किया। पुराण में चरित्र है, पद्म पुराण में कथा है। और महाराज इस कलिकाल के भक्तों में अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने पत्नी के उपदेश से भक्ति प्राप्त की। ओरछा नरेश मधुकर साह भक्त तो थे ही, लेकिन अपनी पत्नी महारानी कुंवर गणेश देई रानी की कृपा से उन्होंने विशेष भक्ति प्राप्त की। स्वामी जी भक्तमाल में लिखा है कि राजा मधुकर साह ने भूमि पर लोट करके अपनी महारानी को साष्टांग दंडवत किया। आप लोग कहेंगे ये तो बहुत शास्त्र विरुद्ध बात हो गई, पति ने पत्नी को साष्टांग दंडवत किया। राम जी यहाँ पति पत्नी को दंडवत प्रणाम नहीं कर रहा है, यहाँ एक प्रेमी भगवान के एक विशुद्ध प्रेमी भक्त को पहचान कर उसे प्रणाम कर रहा है। यहां पति पत्नी को प्रणाम नहीं किया जा रहा है। प्रसंग इस प्रकार का है कि ओरछा की महारानी कुंवर गणेश जो कलिकाल में साक्षात श्री रघुनाथ जी को अयोध्या से लेकर के ओरछा पधारी, मीराबाई की तरह उनका संतों में बहुत अनुराग था और वे संतों का सत्संग करती थी, कथा कीर्तन का श्रवण करती थी और संतों को महल में ही निवास देती थी। और उन संतों के भेष में कोई बहुरूपिया आ गया, वो संत नहीं था, संत का वेश बनाकर वहां आ गया और इसी फिराक में रहने लग गया कि कब अवसर मिले और कुछ लूटपाट कर लूं महल में। एक समय की बात है, रात्रि का समय था, उसने बहुमूल्य महल की सामग्रियों को बटोरा और फिर रानी को देखा तो रानी से कहा कि खजाने की चाबी लाओ। रानी ने कहा महाराज सब कुछ तो आपका है, यहाँ कोई चाबी और ताला नहीं लगाया गया है, आप भगवत स्वरूप हैं, जो चाहें सो ले लें। इस दुष्ट ने अपने मन में विचार किया कि कहीं ऐसा न हो कि इसने मुझे देख लिया है, यह आवाज लगावे किसी दास दासी को और मेरी यही राम नाम सत्य हो जाए। डर गया वो बहुरूपिया, साधु नहीं था, उस वेश में था, तो उसने रानी के ऊपर प्राणघातक हमला किया। तुरंत उसने छुरा निकाला और छुरा फेंक करके प्रहार किया, दूर से फेंक देते ना लोग छुरा, छुरा फेंका तो देखिए रानी उस समय बैठी थी, वो छुरा के भय से उठकर खड़ी नहीं, सहसा वो उठकर के खड़ी हुई और उसी समय उसने छुरे का प्रहार किया। तो छुरा तो इस प्रकार से फेंका था कि रानी के कलेजे में लगे, कंठ में लगे और उसकी मृत्यु हो जाए, पर वो सहसा रानी उठ के खड़ी हो गई उसी समय, तो वो छुरे का जो निशाना था चूक गया, वो कंठ की जगह जंघा में लगा, खड़ी हो गई ना रानी, तो इतने खड़े हो गए तो जंघा पे निशाना लगा, जंघा में छुरा लग गया, भीतर तक धस गया। अब रानी मरी नहीं और ये चोर भाग गया, सामान छोड़ के भाग गया। अब रानी ने विचार किया कि ये सामान्य घटना नहीं है, राजमहल में ये घटना हो जाना, और महाराज को पता चलेगा, दास दासी को किसी को भी पता चलेगा, महाराज तक खबर जाएगी, तो ओरछा की राज्य सीमा में संतों के आने पर प्रतिबंध लग जाएगा और संत नहीं पधारेंगे, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव नहीं होंगे, तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगी। इसलिए इतनी बड़ी घटना को रानी ने छिपा लिया, छुरी को निकाल कर फेंक दिया और पट्टी बांध करके अपने पर्यंक पर लेट गई। सुबेरे अब इतना घाव था, स्नान आदि नहीं कर सकती थी, उसी पीड़ा में पड़ी रही। महाराज पधारे, दासियों से कह दिया, कह देना कि अभी वे मिलने की स्थिति में नहीं है, बस इतना कह देना। महाराज ने यही समझा कि शायद नारियों की जो अशुद्ध अवस्था हो जाती है उस अशुद्ध अवस्था के कारण महारानी मिलने का निषेध कर रही हूं। चार दिन पीछे महाराज पांचवें दिन आए, कहीं महाराज का महल अलग था, रनिवास अलग था। महाराज जैसे ही पधारे तो अभी वो घाव भरा नहीं था। रानी ने फिर दासी से कह दिया, महाराज से कहें कि अभी हमें मिलने की अवस्था में नहीं। तुरंत विचार आया कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। बोले नहीं, अब हम अवश्य भीतर जाएंगे। जाकर के रानी से पूछा और कहा, तुम परम पतिव्रता हो, तुम्हें शपथ है, यह कोई रहस्य वाली घटना घटी है और तुम उसे छिपा रही हो, घटना का प्रकाश करो। कहा, स्वामी महाराज, पहले आप प्रतिज्ञा करें, हमें वचन दें, तब मैं कुछ कहूंगी। पहले ये तो बताओ क्या प्रतिज्ञा करें, क्या वचन दें। बोले, मैं और कोई वचन नहीं चाहती हूं, मैं यही चाहती हूं आप हमें ये वचन दे दें कि मैं ओरछा में संतों के आवागमन को प्रतिबंधित नहीं करूंगा, कथा कीर्तन सत्संग के प्रति अश्रद्धा नहीं करूंगा, जैसे हो रहा है ऐसे ही चलने दूंगा निर्बाध रूप से, तब मैं सुनाऊंगा। अरे बोले, इसमें वचन देने की क्या आवश्यकता है, इसी से तो हमारी शोभा है, मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अच्छा, हमने वचन दिया। तब रानी ने घटना का निवेदन किया और उसमें भी यह नहीं कहा कि किसी बहुरूपिया ने, किसी दुष्ट ने ऐसा किया, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, संत भगवान मेरी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए आए और लगता इस शरीर की मृत्यु थी, बड़ी घटना छोटे में टल गई, पर मुझे ये भय हो गया कहीं आपकी संत वेश में अश्रद्धा न हो जाए, संतों के आवागमन पर प्रतिबंध लग जाए। घटना एक किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा घटी गई और उसके कारण अनेक संतों के का तिरस्कार न हो जाए। यह सुनते ही राजा, लिखा है भक्तमाल में प्रियादासी ने लिखा है कि भूमि पर साष्टांग करी महाराज, और वे रो पड़े। बोले, धन्य है ऐसी पत्नी प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया। वो रो पड़ी, महाराज क्या कर रहे हो? बोले, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम कर रहा हूं। तुम्हारी ऐसी भावना है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, जो भी वैष्णव चिन्हों से अलंकृत होगा, भक्त के चिन्हों से अलंकृत होगा, वह किसी भी स्वरूप में हो, मैं अपने राज पद के अभिमान का त्याग करके उसके चरणों में प्रणाम करूंगा, उसका पूजन करूंगा। ये राजा ने प्रतिज्ञा करी। कहां तक कहें, आपका नौकर, घर में झाड़ू पोंछा करने वाला नौकर, आपकी घर की नौकरानी यदि भगवान की विशिष्ट भक्ता है तो आप नौकर मानकर उसका तिरस्कार न करें, उसको भी भगवान का भक्त मानकर यदि आदर आप करेंगे तो आपको उस नौकर के संग से भी भगवान की भक्ति मिल जाएगी। निश्चल निष्कपट जो व्यक्ति है, सहज सरल जो व्यक्ति है, उन्हीं को संत कहा जाता है, उन्हीं का भगवान में सहज अनुराग होता है। आप लोग कहेंगे ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हां है। आमेर की महारानी, महाराजा माधव सिंह की पत्नी भक्तिमती रत्नावती, उसको भक्ति कैसे प्राप्त हुई? गीता प्रेस के जो छोटे छोटे भक्त चरित्र निकले हैं, पूज्य श्री भाई जी के लिखे हुए, उन भक्त चरित्रों में उनका भी चरित्र है, महारानी रत्नावती का भी चरित्र है। बड़ा अद्भुत चरित्र लिखा है भाई जी ने रत्नावती जी का। भक्त चरितांक जो गीता प्रेस का है उसमें भी भक्तिमती रत्नावती का चित्र भी प्रकाशित है और चरित्र भी, और भक्तमाल ग्रंथ में तो विस्तृत चर्चा है ही। रत्नावती, इसके पूर्व भगवान की कोई विशेष भक्ति का संस्कार उसमें नहीं था, उसके महल में चौका पोंछा लगाने वाली एक दासी, वो भगवान की महान भक्ता थी, वो भक्ता थी और निरंतर नाम जप करती थी, निरंतर नाम जप करती थी, अजस्र नाम जप करती थी, और नाम जप करते करते कभी प्रेम में इतनी विभोर हो जाती थी, ध्यान करते करते लीला चिंतन करते करते जो उच्च स्वर से नाम का कीर्तन करते हुए रुदन करने लग जाती थी। क्या गाती थी?
नवल किशोर कहू नंद के किशोर कहू
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 वृंदावन चंद कही आंखें भर पानी
वृंदावन चंद कही आंखें भर पानी
वृंदावन चंद कही आंखें भर पानी
वृंदावन चंद कही आंखें भर पानी।
नवल किशोर वृंदावन चंद्र नंद किशोर कह करके रोने लग जाती। रत्नावती को आश्चर्य होता कि ये किसका नाम धीरे धीरे रटती, फिर कभी कभी नंद किशोर जुगल किशोर वृंदावन चंद्र कह के रोती है। पूछा कि नंद किशोर तुम्हारा क्या लगता है, क्या रिश्ता है, तुझे कोई बीमारी हो गई है क्या? महारानी बोली, खवासन बोली, दासी बोली, पूछो मत बात सुख करो दिन रात। बात मत पूछो। क्यों? बोले हमारा रोग इतना भयंकर है कि इस रोग को के संबंध में कोई पूछ लेना वो भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है, सुनने वाले को भी रोग लग जाता है। वैसे अनेक संक्रामक रोग होते हैं कि उन रोगियों का संग करे तो वो रोग का संक्रमण हो जाता है। पर दासी बोली हमारा रोग इतना भयंकर है, इस रोग की जानकारी प्राप्त करे, सुने इस रोग के बारे में तो उसे रोग हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, जिस भी किसी भाग्यशाली को श्री कृष्ण प्रेम लगा रोग लगा है वो सुनकर के ही तो लगा है, बिना सुने लगा है किसी को? ये इतना भयंकर रोग है कि सुन करके लग जाता है। बोले नहीं तो सुनाना पड़ेगा। जब कहा सुनाना पड़ेगा तो रसिक नरेश ने की बाणी कह दई है। हाँ रसिक नरेश ने की बाणी कह दई है। को महान भक्ता थी श्री स्वामी हरिदास जी, हरिवंश जी, हरिराम व्यास जी, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी आदि आदि रसिकाचार्यों की वाणी उसे कंठस्थ थी। उसने जब वाणियों की चर्चा सुनाई, वृंदावन की रसोपासना के बारे में समझाया, अब तो महाराज सुन सुन करके पात्र तो रानी बन ही गई थी। और इतनी उच्च कोटि की भक्ता हुई रत्नावती, चरित्र आप सब जानते हैं, सुना है कि षड्यंत्र पूर्वक राजा ने नरभक्षी भूखे सिंह का पिंजड़ा खोल करके महल में भेज दिया कि रानी को शेर खा जाएगा और बाद में एक कमेटी गठित कर दी जाएगी जो अध्ययन करेगी कि आखिर पिंजड़ा कैसे खुला, घटना कैसे घटी, और फिर रिपोर्ट तैयार होगी तब कार्यवाही की जाएगी। ऐसे ही राजनीतिक लोग करते हैं, घटना भी पहले से खुद उसकी तैयारी कर लेते हैं, घटा भी देते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए रिपोर्ट भी वो पहले से सब तैयार रहता है। तो षड्यंत्रकारियों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ये पूरी तैयारी थी। और उस समय महारानी रत्नावती अपने ठाकुर श्री मदन मोहन जी के कपोलों पर पत्रावली की रचना कर रही थी। उसी समय भूखा शेर दहाड़ता हुआ आया और दासी ने कहा महारानी सिंह आया, सिंह आया। आपने नेत्र घुमाकर कहा अहो नृसिंह जी पधारे हैं, अरे आज नृसिंह भगवान पधारे हैं। भौन ते निकसी धायो मानो खंभ भारी आयो,
भौन ते निकसी धायो मानो खंभ भारी आयो।
शेर किसी की पूजा लेगा? और महारानी ने माला पहनाई, टीका लगाया, आरती उतारी, सुंदर सुंदर भोग लगाया और कहा नृसिंह भगवान आशीर्वाद दो। सिंह ने पंजा सिर पे रख के आशीर्वाद दिया नृसिंह भगवान है। और फिर पैतरा बदला, भौन ते निकसी धायो मानो खंभ भारी आयो,
भौन ते निकसी आयो मानो खंभ भारी आयो।
रानी को नृसिंह दर्शन हो रहा है, लगता है नृसिंह भगवान अभी खंभे को विदीर्ण करके प्रकट हुए हैं। दुष्ट सब मारी डारे, जितने षड्यंत्रकारी थे एक को जीवित नहीं छोड़ा। और महाराज मान सिंह माधव सिंह ऊपर छिपकर देख रहे थे, पता नहीं वहां कैसे भगवान के लिए पहुंचना कहां कठिन बात है, वो तो भगवान है। महाराज उलट दिया मान सिंह माधव सिंह को, माधव सिंह का भी जामा फाड़ दिया, जामा ही फाड़ा और कुछ नहीं फाड़ा। क्यों? भगवान ने कहा देखो तुम्हारी जो रक्षा आज भई है वो तुम्हारा संबंध है रानी रत्नावती से, तुम उनके शरीर के पति हो, इस नाते से हैं तुम्हारी रक्षा की जा रही है। पर अब चैतन्य हो जाओ, सावधान हो जाओ, जैसे चर चर तुम्हारा इतना कीमती जामा फाड़ दिया ना, ऐसी तुमको फाड़ने में भी हमें देर नहीं लगेगी, होश में आ जाओ। और जब इस चमत्कार को देखा और जेठ जी महाराजा मान सिंह और महाराजा माधव सिंह दोनों, जेठ जी और पति दोनों भूमि पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं रत्नावती के सामने, धन्य है ऐसी भक्ता। दासी कहती महारानी जी महाराज साहब प्रणाम कर रहे हैं, बड़े महाराज साहब और महाराज साहब प्रणाम कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप इनकी ओर एक बार तो देखिए। रत्नावती कहती है एक ओर ये लगाए, अरे दासी अब तो इन आंखों को नंद नंदन की ओर लगा चुकी हूं, अब संसार के पति पुत्र इनसे देखने नहीं, कहिए प्रणाम कर रहे हैं। ले तो लाल साहब का दरबार है, ठाकुर जी का दरबार है, राजा रंग सभी प्रणाम करते, इसलिए सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कले। भक्त को पहचान लो, अब पहचान करके आदर करो, फिर लौकिक संबंध भूल जाओ, आदर करो।
सरकार
क्लेश का समन कर,
संपत कुमार भगवान,
हाँ हरिशरण बाबा संपत कुमार भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यवन की बादशाह की कन्या शाहजादी से प्रेम हो गया और यवन कुल में भी इतने चुकुट की भक्ता प्रकट हुई, बड़ा विस्तृत चरित्र है। तो कहने का तात्पर्य है भक्त किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी स्वरूप में भक्त प्रकट हो सकता है, बस भक्त को पहचान करके आदर करो। पांडवों ने, पांडवों से बड़ा धर्मनिष्ठ कौन होगा, धर्म सुतही है। और उन्होंने परम भक्ता के रूप में अपनी पत्नी द्रौपदी का आदर किया, द्रौपदी का आदर किया। हम प्रमाण शून्य बात नहीं कह रहे हैं, महाभारत को उठाकर देखिए तो युधिष्ठिर द्रौपदी का आदर करते हैं, पांडव द्रौपदी का आदर करते हैं, किस प्रसंग में? दुर्योधन ने षड्यंत्र पूर्वक अपनी कपटपूर्ण सेवा से दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया और उनको कहा कि अपने 10,000 शिष्यों के सहित पांडवों के आतिथ्य को आप स्वीकार करें, पर तब पहुंचे जब द्रौपदी ने पांडवों ने भोजन कर लिया हो। महर्षि पहुंच गए और सहज स्वभाव बस युधिष्ठिर ने उनको भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया, निमंत्रित कर दिया। महर्षि ने कहा ये कामबन की घटना है, हैं ये जड़खोर की घटना है भैया जी, हाँ काम्यक बन जड़खोर उसी क्षेत्र की घटना है। बोले हम स्नान करके यमुना जी में आते हैं, और वो यमुना स्नान करने के लिए चले गए। और इधर भीम युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी से कि द्रौपदी लाओ बटलोई तैयारी करो। बोले उसको तो मैंने धो मांझ के रख दिया, अब उसमें आज वह सामर्थ्य प्रकट नहीं हो सकती उस अक्षय पात्र में, तब क्या किया जाए। अरे एकाध हो तो कहीं से जुगाड़ करके भोजन करा दो, एक से एक बढ़कर सिद्ध हैं और वो भी 10,000 की संख्या में हैं, कैसे इनको तृप्त करके जिमाया जाएगा। बोले भीमसेन अर्जुन सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठी करो, सूखी लकड़ी इकट्ठी करो, ब्राह्मण के साप से जलकर भस्म होने की अपेक्षा जीवित ही अग्नि में प्रवेश करना उचित है। पांडवों के दुख को देखकर द्रौपदी मुस्कुराने लगी। देवी इस असमय में तुम प्रसन्न दिखाई पड़ रही हो, क्या कारण है। द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण कहूं गए हैं, तुम लोग श्री कृष्ण भक्त बनते हो और इस काल में तुम श्री कृष्ण को बिल्कुल भूल गए। जिन्होंने कौरवों की सभा में वस्त्रावतार ग्रहण किया था वे श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या, लगता है भगवान की विस्मृति तुम्हें हो गई है, इसलिए तुम जीवित जलना चाहते हो। श्री कृष्ण को पुकारो वे आ जाएंगे, जब श्री कृष्ण हमारे हैं तो हमें किससे भयभीत होने की आवश्यकता है। आहा, जब इस प्रेम पूर्ण बात को सुना तो युधिष्ठिर ने कहा देवी तुम्हारी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, हम लोग आज नकली भक्त सिद्ध हो गए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, अवसर पर भगवान को भूल गए, और तुमने ऐसे अवसर पर भगवान की याद कराई इसलिए तुम श्रेष्ठ भक्ता हो। हे द्रौपदी तुम्हारी जैसी भक्ता को पत्नी के रूप में प्राप्त करके हम तो धन्य हो गए, हमारे हृदय में वैसा प्रेम नहीं है जैसा प्रेम तुम्हारे हृदय में है, इसलिए तुम पुकारो श्री कृष्ण को, तुम्हारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ जाएंगे। और द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और ठाकुर जी तुरंत चले आए। बोले कृष्णा बड़ी जोर की भूख लग रही है, भोजन कराओ। हे भगवान गरीबी में आटा गीला, हाँ यहाँ तो 10,000 चेला और एक गुरु जी, 10,001 तो पहले से भूखे बैठे हैं और तुम और आ गए। द्वारिका से आए खा पी के नहीं आए, भोजन करके नहीं आए। ठाकुर जी ने कहा बस आज कुछ राजभोग आरोगने में विलंब हो गया, भोजन की थाली पर बैठा ही था, ओम अमृतोपस्तरण मसी स्वाहा किया ही था, तब तक तुम्हारी पुकार कान में सुनाई पड़ी। तो आचमन वहां किया है भोजन के पूर्व जो आचमन किया जाता है, एक ग्रास भी नहीं लिया, भूखा ही चला आया। और तुम जानती हो थाली की भूख कितनी तेज होती है। द्रौपदी रो पड़ी, भगवान आज ऐसी परिस्थिति है कि आप भूखे हैं, आपको भोजन की थाली से उठाकर मैंने पुकार कर बुला लिया, पर आज बड़े दुर्भाग्य की बात मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊं। अरे कृष्णा तू कंजूस कैसे, कब से हो गई, तेरे भीतर इतनी लोभ वृत्ति कब से आ गई, तीनों लोगों को तृप्त करने की सामग्री तेरे घर में रखी है और तू कह रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है। त्रिभुवन को तृप्त करने की सामग्री कहाँ रखी महाराज, तो बटलोई में, उसको तो धो मांझ के रख दिया। अरे ला तो सही बटलोई। और बटलोई को ठाकुर जी ने देखा उसमें एक साग का पत्ता निकल आया, क्या ठीक से पात्र अमनिया नहीं किया गया था। अरे राम राम, आज हम अपने को बढ़िया साधु नहीं मानते, खड़िया मानते हैं, उत्तम महात्मा तो उत्तम होते हैं, हम तो अपने आप को खड़िया साधु मानते हैं, और फिर भी बर्तन में जूठन लगी हो, बर्तन में दाग हो तो हमको अच्छा नहीं लगता। इतना कोई बर्तन साफ करना पड़े तो इतनी बढ़िया से उसको साफ करने की भावना रहती है कि उसमें किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा या जूठन न लगी रहे, करना ही चाहिए। फिर परम धर्मशीला पतिव्रता द्रौपदी, अत्यंत शौचाचार संपन्ना द्रौपदी, उसने बटलोई मांझी है तो क्या वो झूठी रह गई? नहीं। पात्र बिल्कुल बढ़िया से धोया मांझा हुआ था, स्वच्छ था, पवित्र था, उसमें कोई जूठन का संस्कार नहीं था, पर सत्य संकल्प श्री कृष्ण ने अपने संकल्प से उस बटलोई में एक साक्ष पत्र प्रकट कर दिया और उस पत्ते को छुड़ाकर कहा, ये तो है। अरे महाराज हंसी क्यों करते हो, यहाँ तो मरने की पड़ी है, आपको हंसी सूझ रही है, बोले एक गिलास जल लाओ। वो जल लेके आई, पत्ते को हाथ पर रखा, अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर के भगवान ने जैसे ही ग्रहण किया, सबको महाराज यहाँ तक भराया, सबका पेट भर गया, त्रिभुवन तृप्त हो गई और दुर्वासा जी के चेलों की तो दुर्वासा जी के सहित नाक तक भर आई। वो लोग कहने लगे, जमुना जी में खड़े खड़े संध्या कर रहे थे, मध्यान्ह संध्या, बोले ये क्या ऊर्ध्वाहु चलने लग गई है, ऊर्ध्व श्वास चलने लग गई, मुंह से श्वास, नाक से श्वास लेते नहीं, इतना अधिक भोजन कर लिया, पेट फटा जा रहा है, क्या बात है। कहते एक मथुरा के चौबीस जी ने ज्यादा भोजन कर लिया।